माधव जय कुंज बिहारी
Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Charashtodraksa Srimad His Divine Grace Shila Bhai Charanarvinda Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Shila Prabhupada Ki ISKCON Vibhuti Sansthapaka Acharya Shila Prabhupada Ki Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Charashtodraksa Srimad His Divine Grace Shrila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki नामाचार शिल हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवास अधिगौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की, ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपा ट्रांसेंडल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, निताय गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो बलराम जी के विषय में चर्चा करते हुए हम कथा को आगे बढ़ाते हैं. आज सुबह प्रातःकालीन सत्र में हमने ब्रह्मा जी के तत्व के बलराम जी के तत्व के विषय में चर्चा की. जन्म के विषय में दशम स्कंद में वर्णन आता है, कोथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राग्यम चोभयवं श्यानाम चरितम परमाद्भुतम. तो सूर्यवंश के वर्णन के पश्चात चंद्रवंश के ऊपर दशम स्कंद में वर्णन आरंभ कर रहे हैं. यदौश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशे अवतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशना. तो परीक्षित महाराज कहते हैं, विष्णोर्वीर्याणि, भगवान श्री विष्णु की गाथाओं का वर्णन कीजिए. यदौश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा. तो यदुवंश में भगवान ने जो लीला की उसके विषय में आप बताइए. रोहिण्यास्तनयो प्रोक्तो राम संकर्षणत्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना. तो परीक्षित महाराज के मन में कौतूहल उत्पन्न होता है कि अगर बलराम जी या संकर्षण राम संकर्षण, अगर राम बलराम संकर्षण रोहिणी के अगर तनय हैं, रोहिणी पुत्र हैं, तो देवकी के गर्भ में उत्पन्न होने के पश्चात, प्रकट होने के पश्चात वो बिना देहांतर बिना देह परिवर्तित किए कैसे दूसरे माँ के गर्भ में जा सकते थे, ये उनके लिए कौतूहल का विषय है. श्री चैतन्य लीला ऐ अमृतेर सिंधु त्रिजगत भासाई तेजार एक बिंदु. तो भगवान की कथाएं लीलाएं ये अमृत के सागर की तरह है. हमारे हृदय के भीतर इंद्र तृप्ति के हलाहल विष को दमन करने, शमन करने, नाश करने, ये हरि कथा जब हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय के नवजात कृष्ण भक्ति को संस्पर्श करेगी, तब जाकर हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा. चैतन्य चरितामृत नित्य करपान जहा होइते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान. तो कहते हैं चैतन्य चरितामृत का नित्य पान किया करो. जहा होइते, इस चैतन्य चरितामृत के कथा श्रवण करने पर प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान. प्रेम का आनंद भक्ति तत्व के विषय में जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यहां वर्णन आ रहा है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के समक्ष जब ये प्रश्न रखते हैं तो उनका हृदय गदगद हो रहा है कि मैं अब श्री कृष्ण और बलराम जी के विषय में दशम स्कंद में उनके इन बाल लीलाओं का श्रवण करने वाला हूं। अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितम् अद्भुतम् मानुषम् लोकमासाद्य तद्जातिम् अनुरुन्धत। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विशेष रूप से बाल लीलाएं ये बड़ी रोचक होती हैं, क्योंकि किसी भी अवतार में इस प्रकार के बाल लीलाओं का वर्णन अभी तक नहीं सुना गया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वैयासकी स भगवान अथ विष्णुराट प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषम्घम व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान। तो यहां वर्णन आ रहा है कि कृष्ण कथा के प्रवाह को एक उचित शक्तिशाली औषधि के रूप में बद्ध जीव के हृदय में क्रांतिकारक परिणाम लाने के लिए किन दो न्यूनतम आवश्यकताओं की यहाँ पर वर्णन की गई है। सबसे पहले कहते हैं विष्णुराटम, अर्थात ऐसे भक्त जिनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक स्वाभाविक श्रद्धा और अनुराग पनप रहा हो, जो कि भगवान श्री कृष्ण के विशेष कृपा के द्वारा उनकी श्रद्धा सुरक्षित है। विष्णुराटम तस्मात् नामना विष्णुराट इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आया है कि जब परीक्षित महाराज को भगवान ने अपने सुदर्शन अस्त्र से संरक्षण दिया तो उनका नाम पड़ गया विष्णुराट। तो इसलिए वो जिनका देह, जिनकी श्रद्धा, जिनका उत्साह भगवान के द्वारा सुरक्षित हो, विष्णुराट। और दूसरा भागवत प्रधान, तो श्रोता अगर विष्णुराट हो, जीवन की हर प्रकार की जटिल विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी वो इस बात को समझे कि ये केवल भगवान की इच्छा है मुझे अपनी बलिष्ठ भुजाओं के माध्यम से अपने हृदय के निकट आलिंगन करने। महाविपत्तौ संसारे यस्मरेत मधुसूदन विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। भले अपने जीवन में संपत्ति आए विपत्ति आए, दोनों को समान रूप से देखते हुए भगवान के द्वारा भेजा गया प्रेम पत्र मानकर जब हम उसके माध्यम से भगवान के निकट आने का आग्रह करेंगे तो इसका अर्थ है कि हमने अपनी श्रद्धा को भगवान की कृपा के कवच से सुरक्षित रखकर उन हरिकथाओं के माध्यम से भगवान की इच्छा रूपी प्रसाद को स्वीकार करने का विचार किया है। तो भागवत श्रवण और इस प्रकार की कथाओं को आयोजित करने के पीछे एक ही पर्याय है कि हम जीवन के हर संपत्ति भरे और विपत्ति भरे परिस्थिति को भगवान के द्वारा दिया हुआ प्रसाद के रूप में देखें। प्रसाद में कभी कोई मीठा कभी कोई कड़वा, लेकिन दोनों महाप्रसाद ही है, भगवान के प्लेट से ही निकलता है। भले हमारे स्वाद के वो अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल, दोनों को समान रूप से हम सम्मानित करते हैं। उसी प्रकार इन कथाओं के श्रवण के माध्यम से हम इस बात को समझते हैं कि भगवान जैसा भी हस्तक्षेप हमारे जीवन में करेंगे वो वास्तव में उनकी कृपा के रूप में होगा। तो इसलिए यहाँ पर आगंतुक मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित क्षण भर के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से अपने ध्यान को दूर नहीं किए हैं। भले वो मृत्यु उनके निकट आ रही हो, लेकिन उनका संकल्प स्थिर है, अडिग है, भगवान के चरणों में केंद्रित है। तम मोपयंतम प्रतियंत विप्रा गंगा च देवी दृजित्तम ईशे द्विजोपसृष्ट कुहकस। भले उस श्रृंगी के द्वारा भेजा गया विषधर भुजंग आकर मुझे डंक मारकर मेरे इस देह को भस्मीभूत कर दे, लेकिन मुझे अपने देह के नाश का कोई भय नहीं, मुझे केवल अपने ध्यान के भंग होने का नाश है। मुझे अपने शरीर के नाश का भय नहीं, मुझे अपने मन के केंद्रित होने के नाश का भय है कि कब मेरा मन विचलित हो जाए। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, पीपल इन जनरल आर अनअवेयर द मैसेज ऑफ भागवतम कैन गिव ऑल सोसाइटी रिलीफ फ्रॉम द पैंग्स ऑफ कलियुगा। अर्थात कलयुग के प्रकोप से हमें ये हरि कथा बचा सकती है, क्योंकि पदम पदम यत पिपदम नतेषाम, किसी भी क्षण मृत्यु प्रकट हो सकती है, लेकिन हम इन कथाओं के माध्यम से भगवान का निरंतर दर्शन करते रहेंगे। तो इसलिए इस जीवन काल में चाहे व्यक्ति कितना भी स्वस्थ क्यों न हो, मृत्यु का पराभव अनिवार्य है और कोई भी उससे बच नहीं सकता, छूट नहीं सकता, उससे दूर नहीं हो सकता, ये अवश्य ही अपने जीवन में आना है। एक मैं कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति अपने जो बूढ़ी माँ को छोड़कर दूसरे गांव गए विदेश में, उनके मित्र को बोल के गए कि देखो भाई मेरी माँ का थोड़ा ख्याल रखते रहना, देखते रहना वो ठीक ठाक है कि नहीं। और उनका एक बिल्ली भी था, बोले वो भी मुझे बड़ा प्रिय, दोनों का ख्याल रखना। अब वो चले गए बाहर गांव, तो कुछ दिनों के बाद उनको पत्र मिला, जो मित्र उनके गांव में माँ की देखभाल करने छोड़ के रखा था उसका पत्र था। तो पत्र खोल के देखा तो पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र बड़े खेद की बात है, तुम्हारी बिल्ली मर गई। तो इसको बड़ा क्रोध आया, उसने अपने मित्र को पत्र लिखा कि यार मुझे पता है कि ये बिल्ली मुझे इतनी प्रिय है, फिर भी सीधा लिख दिया मर गई, ऐसा थोड़ी लिखना चाहिए। पहला पत्र में तुमको लिखना चाहिए, प्रिय मित्र तुम्हारी बिल्ली अब ठीक ठाक है, कभी कभी वो ऊपर टेरेस पर जो है घूमने के लिए निकलती है, कभी कभी टेरेस पर चलती है। तो पहला पत्र ऐसा लिखने के बाद कुछ महीने के बाद फिर दूसरा पत्र लिखना चाहिए कि आपकी बिल्ली ठीक है, छत पर चलते चलते एक दिन वो गिर गई, फिर पत्र बंद कर दो। फिर दो तीन महीने बाद फिर पत्र लिखो कि प्रिय मित्र खेद की बात है कि जब बिल्ली छत से गिरी उसको बड़ी चोट आई, हम लोग अस्पताल लेके गए हैं, उसका उपचार कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा डॉक्टर लगा हुआ है। फिर और दो चार महीने के बाद फिर पत्र लिखो कि प्रिय मित्र बड़े से बड़े डॉक्टर पूरा प्रयत्न करते हुए भगवान का नाम लेते हुए वो बिल्ली स्वर्गवास हो गई। ऐसा आपको समाचार प्रकट करना चाहिए, नहीं बिल्ली मर गई। तो फिर उस मित्र को जब पत्र मिला उसके बाद उसने फिर दूसरा एक पत्र कुछ दिनों बाद भेजा, ये विदेश में, इसने फिर पत्र खोला, उसमें लिखा था, प्रिय मित्र तुम्हारी माँ अभी ठीक ठाक है, कभी कभी छत पर चलती है। अब आप इस सत्य को ऐसे बताओ या ऐसे बताओ, इस जगत में कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयत्न करने पर मृत्यु से बच नहीं सकता। इसलिए तो यौवन संपन्न अवस्था में इतनी सफलता प्राप्त किए हुए, पुण्यों का संचार किए हुए परीक्षित महाराज को उदाहरण बनाकर हम सभी के सामने प्रस्तुत किया गया कि बेटा ये नहीं बच सका तो तू क्या बचेगा। श्री रूप द्वारा ब्रजेर प्रेम रसलीला के बुझीते पारे गंभीर चैतन्य रखेला। इसलिए महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बता दिया कि भाई अगर इस जगत के लोगों को अमृतत्व को प्राप्त करना हो तो केवल इन ब्रज लीलाओं के संपर्क में आकर वो वास्तव में अमर हो सकते हैं। तो भी तो पांडित्य तो मार हुई बेसफल,
कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णिबे सकल।
तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी उस पंडित को जिसके विषय में हम आज सुबह चर्चा कर रहे थे, तुमार तबे तो पांडित्य तुमार होइबे सफल, आपका पांडित्य तब सफल होगा,
कृष्णेर स्वरूप लीला वर्णिबे निर्मल,
जब कृष्ण की शुद्ध निर्मल लीलाओं का आप वर्णन करोगे, कीर्तन करोगे और श्रवण करोगे। तो अब यहां वर्णन आता है,
वासुदेव कलानंत सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भवितो देवो हरेर प्रिय चिकीर्षया।
तो वर्णन आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त शक्तियों के साथ वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट होंगे और उनके स्वांश विस्तारित रूप सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो, उनसे पूर्व भगवान श्री वसुदेव के, भगवान वासुदेव के प्राकट्य के लिए, कृष्ण के प्राकट्य की तैयारी करने से पूर्व बलदेव जी प्रकट होंगे, हरि प्रिय चिकीर्षया, उनकी प्रेममयी सेवा में जो लगे रहते हैं। द फॉरमोस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा इज संकर्षण नोन एज अनंत। वासुदेव कला, वो वासुदेव के कला होंगे, अनंत सहस्र वदन स्वराट। तो इसलिए यहां पर यह वर्णन किया गया है, क्यों प्रकट होंगे वो, हरि प्रिय चिकीर्षया, ही विल अपियर जस्ट टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज पास टाइम्स।
प्रेम देखी सेवक कहे होइया विस्मित, कृष्ण ये इहार बश होए यथोचित।
जब माधवेंद्रपुरी को उस पुजारी ने देखा रेमुना में, गोपीनाथ जी के पुजारी ने, तो प्रेम देखी सेवक तारे होइया विस्मित, बड़े विस्मित हो गए और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के मुखमंडल से परिलक्षित विभिन्न दिव्य चिन्हों को देखकर, स्वेद कंप अश्रु इत्यादि को देखकर वो समझ गए, कृष्ण ये इहार वश होए यथोचित, अवश्य कृष्ण इनके वशीभूत हो गए हैं, उनको पूर्ण श्रद्धा हो गई इस बात की।
पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, विचार अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार।
तो माधवेंद्रपुरी के इस प्रेम के लक्षणों को देखकर सभी चमत्कार में आ गए और अलौकिक प्रेम, माधवेंद्रपुरी के अलौकिक दिव्य अभूतपूर्व प्रेम को देखकर किसी भी जीव का चित्त विस्मित हो जाता। अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो भगवान के प्रति इस प्रकार का प्रेम प्रकट किस तरह करें, इसको प्रकट करने के लिए, इस पद्धति को प्रदर्शित करने के लिए, इसका विज्ञापन करने माधवेंद्रपुरी सेवा में लगे रहे।
बहु परिश्रम चंदन रेमुना आनिला, आनंद बड़िला मने दुख न गणिला।
तो बहुत परिश्रम करके उन्होंने सेवा की, अपने आराध्य भगवान गोपाल के विरह में रह गए और विरह में रहकर भरपूर कष्ट उठाते हुए अपने स्वामी भगवान गोपाल उनकी सेवा में लगे रहे और इसलिए भगवान ने उन्हें श्रीमती राधा रानी और गोपियों के विरह भाव में प्रवेश करने का ये अवसर दिया। तो जिस हद तक हम भगवान की सेवा में तपस्या करने के लिए तैयार होंगे, उस हद तक भगवान भी कृष्ण प्रेम के बोतल की ढक्कन को खोलकर हमें उसके रस को चखने का अवसर देंगे। तो इसलिए यहां पर बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में जो रस, जो भाव हम अनुभव कर सकते हैं, उसका ज्ञान प्रकाशित करते हैं।
किम दुस्सहम नु साधुनाम विदुषाम किम उपेक्षिताम किम अकार्यम कदर्यानाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम।
तो वसुदेव जी,
कंस के साथ वाद विवाद करते हुए बहुत प्रयत्न करके देवकी के जान को बचाए, और तत्पश्चात प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान उसको लाकर सौंप दिया कंस को। कंस ने वसुदेव जी के नेत्रों के समक्ष उस नन्हे से अबाल अबोध बालक को, जिसके कितने कोमल अंग प्रत्यंग थे, अपने 10,000 गजराजों से अधिक शक्ति रखने वाले बलिष्ठ भुजाओं में अपने हाथ ऊपर उठाया, और उठाकर उस नन्हे से मासूम बच्चे को उसी कारागृह के अंदर पड़े हुए विशाल चट्टान पर दे मारा। और वसुदेव और देवकी के नेत्रों के सामने उन्हें उनके नन्हे से शिशु के चीथड़े हुए और उनके रक्त के फव्वारे उठे, और वसुदेव जी को इस प्रकार के दर्दनाक अनुभव को देखना पड़ा। तो वसुदेव जी के विषय में यहीं पर वर्णन आ रहा है, किम दुःसहम नु साधु नाम। भगवान गीता में सबसे पहले जब मुंह खोले तो बोले अशोचान अन्वशोचस्तम, फिर बोले नत्वेवाहम जातनासम, फिर बोले देहिनोस्मि नेता देह। उसके बाद तत्वज्ञान का वर्णन करने के पश्चात तुरंत चौथा श्लोक बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि अर्जुन आगे गीता में बहुत सारे श्लोक बहुत सारे अध्याय सुनाने वाला हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि गीता के श्लोक सुनकर आपके जीवन के कोई विपरीत परिस्थितियाँ कम होने वाली हैं। ऐसा मत सोचो कि आपके जीवन में विपत्ति कम आएगी, लेकिन आपके हृदय में श्रद्धा की संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग सत्संग में कथा सुनते हैं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करके सेवा पूजा करते हुए उनके सुंदर आराधना इसलिए नहीं करते कि विपत्ति टल जाए, हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे हृदय में भक्ति और श्रद्धा की संपत्ति बढ़ जाए। अस्पताल इसलिए नहीं खोले जाते हैं कि विश्व में बीमारी का नामो निशान मिट जाए, चाहे कितने करोड़ अस्पताल खुल जाए बीमारी तो हमेशा रहेगी। तो चाहे आज भारत में 20 लाख मंदिर क्यों न हो और पूरे विश्व भर में लाखों दूसरे मंदिर सत्संग क्यों न हो, भारत में किसी भी समय 27,000 भागवत कथा एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन चाहे कितने कथा कितने कीर्तन कितने मंदिर क्यों न खुल जाए, जगत में विपत्ति और विपत्तियों की मूसलाधार वर्षा भगवान निरंतर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये इस जगत का नियम है। इसलिए जे काले निमाए पड़े धोरणी ऊपरे, जथा ये न हिलागे निमाई शरीरे। तो सची माता, भगवान चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन में धरती पर गिरते हुए देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है, प्रभो कृपा करके मेरे निमाय को उसके अंग को बचाइए, जब वो धरती पर गिरे तो उसको चोट न लगे। आपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी, तार जई सुख ताहा सुख जई मनी। तो सच्ची माता कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा सुख और मेरा दुख जीवन में क्या है। आपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी, तो ये माधवेंद्रपुरी के कथा में भी ये वाला श्लोक आता है, बहु परिश्रम चंदन रेबुना आनिला आनंद बढ़िला मने दुख न गणिला, दुख की गणना न करना। आपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी, गणना नहीं कर रही थी। तार जई सुख तार निज सुख मानी, जो महाप्रभु का सुख था उसी को अपना सुख मानकर चल रही थी शची माता। तो इसलिए यहां पर अब सातवें, जब 6 गर्भ देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और वो 6 पुत्रों को कंस ने निर्मम रूप से हत्या कर दी। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते, गर्भो बभोव देवक्य हर्ष शोक विवर्धना। सप्तमो, 7वें गर्भ के 7वें जन्म, वैष्णवम धाम, भगवान श्री विष्णु के ही स्वरूप यम अनंतम प्रचक्षते, जिनका नाम था अनंत। गर्भो बभूव देवक्य, देवकी के गर्भ में वो प्रकट हुए। हर्ष शोक विवर्धना, तो देवकी हर्षित भी हुई कि वो समझ गई कि अब बलराम जी प्रकट हुए हैं अपने विशेष स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व गर्भ को तैयार करने, शुद्ध करने, उनके लिए व्यवस्था करने। हरि प्रिय चिकीर्षया। लेकिन शोक भी हुआ क्योंकि वो जानती थी कि भगवान की इच्छा के अनुसार अब यहां से वो जाएंगे। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम् यदुनाम निजनाथानाम योगमायाम समादिश। तो यहां पर भगवान जो कि सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं, भगवान अपि विश्वात्मा, विश्वात्मा के रूप में विदित्वा कंसजम भयम्, कंस से प्रेरित भय के कारण, यदुनाम निजनाथानाम, जो यदु वंश के नाथ थे उन्होंने योग माया को बुलाया, योग मायाम समादेश, और योग माया को इस प्रकार आदेश किया, और ऐसा आदेश किया क्योंकि अब वास्तव में बलराम जी देवकी के गर्भ में प्रकट हो गए थे। अब देवकी का गर्भ धाम बन गया था क्योंकि भगवान के अंश वहां पर प्रकट हो चुके थे। गदादर छाड़ गेनो इहो दुख पाइला, से ही हे तो वृंदावन जाइते नारीला। जब महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाए और बंगाल से पुनः पुरी लौट के आए तो सभी वैष्णवगण आश्चर्यचकित होकर पूछे कि आप इतने शीघ्र लौट के कैसे आ गए। तो महाप्रभु ने कहा, मैं वृंदावन पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि गदाधर पंडित को मैंने कष्ट दिया था, और इसलिए सही है तू वृंदावन जाइते नारीला, इसलिए मैं वृंदावन नहीं जा पाया। तो इसको सुनकर गदाधर पंडित क्या कहते हैं, तुम्हें यहां यहां रह ताहा वृंदावन, ताभो वृंदावन ताहा गंगा यमुना सब तीर्थगण। कहते हैं, हे प्रभु, जहां आपके चरण कमल पड़े वही गंगा और वही यमुना और वही सारे तीर्थगण प्रकट हो जाते हैं। तुम्ही यहां यहां रह ताहा वृंदावन, आप जहां रहोगे वही वृंदावन है। लेकिन फिर कहते हैं महाप्रभु को, तबो वृंदावन जाह लोके शिखाइते सही तो करीबे तुमार जई लैते चित्ते। आप जहां प्रकट होते हो, जहां आपके चरण स्पर्श होते हैं, वो स्थान धाम बन जाता है, लेकिन फिर भी आप स्वयं वृंदावन जाने का प्रयत्न कर रहे हो, लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने कि मनुष्य जीवन में अर्च विग्रह की आराधना, नाम भागवत वैष्णव सेवा के साथ धाम की आराधना करनी आवश्यक है, और समय समय पर धाम में जाकर अपने आप को शुद्ध करना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं तबु वृंदावन जाह, फिर भी आप वृंदावन जाते हो, भले आप साक्षात धाम के मूर्तिमान स्वरूप हो। तबु वृंदावन जाह लोके शिखाइते, लोगों को शिक्षा देने है, और कुछ नहीं। सही तो करीबे तोमार जोई लेते चित्ते, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो, स्वराट हो, जो आपकी इच्छा है वो करोगे। तो अब भगवान योग माया को आदेश करते हैं और कहते हैं, गच्छ देवी ब्रजम बद्रे गोप गोपीर अलंकृतम रोहिणी वासुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। देखिए, आप जाइए और जो देवकी के गर्भ में पुत्र है उसको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कीजिए। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यां धाम मामकं तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। तो मैं आपको आदेश करता हूं कि देवकी के गर्भ के अंदर से तन सन्निकृष्य उसको खींचिए, आकर्षित कीजिए और रोहिण्या रोहिणी के गर्भ में उसे प्रस्तुत कीजिए। उससे क्या होगा, इससे देवकी का गर्भ भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के लिए तैयार होगा। तो इसलिए भगवान यहां पर सबसे पहले प्रकट कर रहे हैं कि देवकी के गर्भ में जो पुत्र जन्म हुआ है वो भगवान का ही स्वांश स्वरूप है, जिसका नाम है शेष, जिनका नाम है संकर्षण। और अब यहां बड़ा सुंदर वो वर्णन करते हैं कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के पहले सप्तम गर्भ के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो कहते हैं तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय शेषाख्यम धाम मामकम। वो देवकी के गर्भ को धाम के स्वरूप में प्रकट करने के लिए गए, क्योंकि जो षट गर्भ पहले पैदा हुए थे वो मारीच के छह पुत्र, मारीच मन के प्रतीक और उनके पुत्र अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर षड रिपु, और उनके प्रभाव से देवकी का गर्भ एक दृष्टि से प्रदूषित हो गया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व उस गर्भ को भगवान की दिव्यता को स्वीकार करने योग्य बनाना आवश्यक था। इसीलिए भगवान के ही विस्तारित रूप बलराम जी उनकी सेवा में वहां पहले प्रकट हुए। देवकी भक्ति की प्रतीक है, क्योंकि भक्ति ही कृष्ण को पैदा कर सकती है। भक्तिर एवैनम दर्शयति, भक्ति ही कृष्ण का दर्शन करा सकती है। ओनली भक्ति कैन मैनिफेस्ट कृष्णा। तो देवकी क्या कर रही थी, देवकी निरंतर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व कंस से भयभीत थी। कंस का भय उन्हें निरंतर सता रहा था, लेकिन वो भय उन्हें शुद्ध भी कर रहा था। उसी प्रकार जब भक्ति मार्ग में प्रगतिशील भक्त काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और असत्संग से भयभीत जब कार्य करता है, असत्संग अर्थात कंस असत्संग के प्रतीक थे, असत्संग के मूर्तिमान स्वरूप कंस थे, तो जब हम असत्संग से भयभीत होकर दूर रहेंगे तो फिर उसके प्रभाव से हम सत्संग के अंदर आकर ये षड रिपु को नष्ट कर पाएंगे। तो काम क्रोध लोभों मद मत्सर से मुक्त होना हो तो उसके लिए दो उपाय चाहिए, एक असत्संग से दूर होना और दूसरा सत्संग प्राप्त करना। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकाकी आमार नाही पाई बोल हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कहते हैं कि मैं भी एकांतवास में रहकर भजन नहीं कर सकता, एकाकी आमार नाही पाई बल हरिनाम संकीर्तने, ये हरिनाम संकीर्तन का प्रतिपादन मैंने ही किया। गोलोकेर प्रेमादन हरिनाम संकीर्तन भट्टाचार्य कोहे मधुर वचन चैतन्य सृष्टि प्रेम संकीर्तन, ये प्रेम संकीर्तन गोलोक से भगवान श्री कृष्ण ने निर्माण किया, आविष्कार किया, प्रकाशित किया। लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन को लेके आए वो स्वयं कह रहे हैं एकांत में अकेला अन्य वैष्णवों का अवलंबन किए बिना मैं ये हरिनाम नहीं ले सकता। तुम्हें कृपा कोरी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, और जब तक वैष्णवों के ऊपर आश्रित नहीं होंगे, उनके सामने नम्र नहीं होंगे, तब तक कृष्ण नाम में हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक डॉक्टर अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, एक डॉक्टर चाहे कितना भी डॉक्टरी का ज्ञान जाने, लेकिन जब उसे सर्जरी का समय आता है तो डूबते डॉक्टर के सामने जाकर उसे नम्र होना ही पड़ता है। इसीलिए भक्ति में प्रगति अपने दिमाग में बैठे हुए ज्ञान के आधार पर नहीं, लेकिन हम दूसरे वैष्णवों के सामने जाकर नम्र होने के लिए कितना तैयार होते हैं, उस आधार पर दिमाग से एक एक बूंद ज्ञान हृदय में उतारते हैं भगवान अपनी कृपा से। गौरा पहो ना भजिया मैनु प्रेम रतन धन हेलाय हराइनु। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य प्रेम के अनमोल रत्न को त्याग कर मैं इंद्र तृप्ति के कीचड़ में लौट रहा हूं। अधन यतन धन धन त्यागिनु आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनु। लेकिन मैं अपने इस दयनीय अवस्था के लिए किसको दोष दूं? इसका उत्तरदायित्व तो मेरा स्वयं का है, क्योंकि हर क्षण मैंने अपने जीवन में निर्णय लिए हैं, उस निर्णयों का उत्तरदायित्व तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। आपना कर्म दोषे आपनी डूबिनु, और उस कर्म के दोष के भार के कारण मैं इस भव सागर में डूबता चला जा रहा हूं। सत्संग छाड़ी कोइनो असते बिलास ते कारणे लागिलो ये कर्म बंद फास। सत्संग में आने के बाद धीरे धीरे वैष्णवों के ऊपर मेरी श्रद्धा कम होने लगी। इसको कहते हैं सत्संग छोड़ना। सत्संग छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि गेट के बाहर हम निकले। सत्संग छाड़ी अर्थात हमें वैष्णव तिलकधारी सामान्य अपमान के योग्य व्यक्ति लगे, वो प्रमाण है कि हम सत्संग छोड़ चुके हैं। सत्संग छाड़ी कोइनो असते बिलास, और जैसे इस प्रकार की धारणा मन में उतरेगी और मन में वैष्णवों को सामान्य मानकर उनके प्रति अपमान की भावना जागृत होगी, असते बिलास मन चारों तरफ हरिनाम और हरि कथा से घिरा हुआ भी उसमें तैर नहीं पाता और वो विषय के सागर में ही डूबने के लिए लालायित रहता है। ते कारणे लागिलो ये कर्म बंद फास, और इसलिए ऐसे कर्म के बंधन को अपने गले में बांध कर हम इस भवसागर में और डूबते चले जाते हैं। विषय विषम विष सतत खाइनु गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु। इस्कॉन डिजायर ट्री में करोड़ों लेक्चर और करोड़ों कीर्तन और करोड़ों अलग अलग प्रकार के कृष्ण कथा में मन को आविष्ट करने के साधन होने पर भी इस वैष्णव अपराध के कारण, वैष्णव उपेक्षा और वैष्णव अपमान मानसिक रूप से करने के कारण हमारे मन और भगवान के चरण कमलों के बीच भगवान एक अदृश्य दरार डाल देते हैं। कहते हैं बेटा तू यहां नहीं पहुंच सकता जब तक अपने मन को सुधारेगा नहीं। और इसीलिए गौर कीर्तन रसे मगन न होइनु, लाउड स्पीकर सिस्टम कथा और कीर्तन से गूंजेगा लेकिन फिर भी वो मन में उतर नहीं पाएगा। केनो वाचे प्राण की सुख पाया नरोत्तम दास केनो नागेलो मारिया। तो कहते हैं ऐसी अवस्था में मनुष्य जीवन प्राप्त करके मैंने स्वर्णिम अवसर गंवा दिया, इसलिए अभी मैं बड़ा पश्चाताप कर रहा हूं कि अवसर प्राप्त हुआ था सत्संग का। और मुझे कंस जैसे कुसंग से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंने कंस जैसे डकैती कुसंग को अपने मन में पाल कर पोस कर उसे बड़ा किया और उसने मेरे मन के ही अंदर नवजात कृष्ण भक्ति और श्रद्धा को नष्ट कर दिया। शुक्ल वस्त्रे मा से बिंदु याय छे न लुकाए सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाए। महाप्रभु कहते हैं इसलिए मुझे प्रताप रुद्र महाराज के निकट मत लेके जाओ, वो विषयी है। सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाए, सन्यासी थोड़ा सा गलती करेगा सभी लोग उसकी चर्चा करेंगे। राय कहे कत पापीर कोरियाछ अव्यहति ईश्वर सेवक तोमार भक्त गजपति। रामानंद राय कहते महाप्रभु आप दक्षिण भारत में करोड़ों लोगों को आलिंगन किए, कभी किसी का परिचय थोड़ी लिया कि तुम विषयी हो कि क्या हो, ये तुम्हारा भक्त है ईश्वर का सेवक है बेचारा। प्रभु कहे पूर्ण यैछे दुग्धेर कलश सुरबिंदु पाते जैछे ना परे परश। महाप्रभु कहते हैं देखो अगर शुद्ध दूध का एक बहुत बड़ा जग हो, मटका हो, और उस शुद्ध दूध के मटके के अंदर एक बूंद अगर सुरा मदिरा पड़ जाए तो फिर वो सुरा का मटका, वो दूध का मटका दूध रहता है कि वो सुरा बन जाता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। सुरबिंदु पाते जाइत छे दुग्धेरा परश, तो उसको नष्ट कर देता है। इसलिए जिस प्रकार देवकी का कंस के भय के कारण वो शुद्ध हुई, उसी प्रकार भक्ति जब कुसंग से भयभीत रहकर सत्संग करेगा, सत्संग से सुरक्षित और कुसंग से दूर रहेगा, तब ऐसी अवस्था में बलराम जी अंदर प्रकट होकर आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान उद्दीप्त करते हैं। और तब ऐसे ज्ञान के परिवेश में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के लिए तैयार होते हैं। तो ये यहां पर वर्णन किया गया है। आफ्टर द सिक्स सन्स काम क्रोध आर किल्ड द शेषा इनकारनेशन क्रिएट्स अ सूटेबल सिचुएशन फॉर द अपीयरेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। दुहि प्रभु लैया आचार्य गेला भीतर घरे प्रसाद देखिया प्रभु आनंद अंतरे। तो इसलिए जो देवकी के गर्भ में शंकरशन ने तैयार किया, बलराम जी ने तैयार किया अनुकूल परिवेश, महाप्रभु ने कलयुग के हर गृहस्थ के लिए उसी प्रकार का अनुकूल भक्तिमय परिवेश तैयार करने का विशेष प्रयोग दिया है, उपाय दिया है। आपके घर के चार दीवारी के अंदर आप भगवान के विग्रह को स्थापित करो या भगवान के फोटो को रखो और इस बात को घोषित करो कि आपका घर अब भगवान के ऊपर और उनकी सेवा के ऊपर केंद्रित है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को लेकर अद्वैत आचार्य जब अपने घर में प्रवेश किए, विशाल मात्रा में उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की थी। दुहि प्रभु लैया गेला आचार्य भीतर घोरे प्रसादे देखिया प्रभु आनंद अंतरे। उस प्रसाद को देखकर महाप्रभु आनंदित हुए और उस प्रसाद को देखकर महाप्रभु ने भविष्य की पीढ़ियों के उत्साह और प्रोत्साहन के लिए घोषणा की। अयछे अन्न जे कृष्णा के कोराए भोजन जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। तो कलयुग में यह आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े शास्त्र के विद्वान बनो, हर प्रकार की भाषा में विशेष ज्ञान रखो, व्याकरण के शास्त्री बनो, आपको किसी प्रकार के कला को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रतिदिन 2-3 बार भोजन अवश्य करना पड़ता है। केवल जो आप भोजन बना रहे हो उसे स्वीकार करने के पहले भगवान को बस भोग मात्र लगाओ। ऐछे अन्न जे कृष्णा के कराए भोजन। अगर कलयुग में कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए अपने भोजन से पहले केवल भगवान को पहले भोजन करा दे, बस अपने भोजन में केवल 10 मिनट का विलंब कर ले, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहर चरण। भगवान कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए मैं ऐसे भक्त के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। आचार्य रे श्रद्धा भक्ति गृह संपत धने सकल सफल होइल प्रभुर आराधने। अद्वैत आचार्य गृहस्थ थे लेकिन उन्होंने श्रद्धा भक्ति गृह संपत्ति धन इत्यादि सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया, इसीलिए सकल सफल होइल प्रभुर आराधने, सब कुछ प्रभु के आराधना में समर्पित कर दिया। राधानाथ महाराज बहुत साल पहले अपने राधा गिरधारी प्रभु के कंपनी में गए थे पिट्सबर्ग में, मतलब वो ड्राइव पे जा रहे थे, महाराज ने कहा उनको थोड़ा कहीं आसपास टॉयलेट है क्या, तो राधा गिरधारी प्रभु ने कहा मेरा ऑफिस पास में है वहीं चलते हैं, और महाराज को लेके गए और वो महाराज ने बाथरूम यूज किया। उसके बाद राधा गिरधारी प्रभु ने अपने कैबिन में लेके गए, बोले मेरा सीट यहाँ पर है थोड़ी देर बैठिए, तो महाराज ने कहा नहीं नहीं जल्दी हो रही है अपन चलते हैं, नहीं नहीं प्लीज बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, धंधा शुरू करके पहला साल है जबरदस्त लॉस चल रहा है, ऐसा चलता रहा तो दिवाला निकल जाएगा, तो आप बैठेंगे तो हो सकता है कुछ हो। तो महाराज ने कहा मेरा तो पहले ही दिवाला निकला हुआ है लेकिन आप कहते हो तो बैठ जाता हूं। बैठ गए, थोड़ी देर बैठे उसके बाद वो निकल पड़े। ठीक एक सप्ताह के अंदर वो बिजनेस यू टर्न मारकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, ये 1999 की बात है। 2001 तक वो बिजनेस का इवेल्युएशन $300 मिलियन का हो गया, और वो एक इजराइल के एक कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया हम खरीदना चाहते हैं, तो हमारा अपने राधा गिरधारी प्रभु ने उनको बोला कि इतना हम लोग उसमें बेचेंगे उसको, तो बोला यार ये तो बहुत ज्यादा रेट लग रहा है, बहुत दाम लग रहा है, इतना क्यों आपका कंपनी इतना महंगा क्यों है। तो उन्होंने कहा ये कंपनी मेरे गुरु के कृपा का बना हुआ है। तो सामने वाला घबरा गया, बोले ये क्या है, मैं तो बहुत बिजनेस नेगोशिएशन किया पहली बार सुन रहा हूं। तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, जो भी हम लोग का प्रॉफिट आता है हम लोग मंदिर को देते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ हो रहा है हुआ है। तो वो इसराइल का टेल अवीव में रह रहा था, वो बोलता है मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है मिलने के लिए, गुरु कौन है भाई, अपन भी मिलते हैं, जिनके सीट पे बैठने से 2 साल में इतना कंपनी बढ़ सकता है उनके भी दर्शन हम कर लें। तो वो डायरेक्ट आए एयरपोर्ट से चौपाटी आए, और चौपाटी में महाराज को मिले, महाराज भी ज्यूइश बैकग्राउंड के, दोनों काफ़ी अपने पुरानी बातें करने लगे, और महाराज तो 1-2 घंटा उनको बहुत मनोरंजन कराए। और फिर वो व्यक्ति जब बाहर निकले, बाहर निकल कर बोले ये व्यक्ति जबरदस्त है मैं कंपनी खरीद रहा हूँ, और देखते ही देखते फिर वो कंपनी उनका बिक गया। तो वास्तव में वो बताते हैं कि उस समय हम लोगों के माइंड में कोई आइडिया नहीं था कैसे किस दिशा में जाएगा। खैर इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग महाराज को बुलाए अपने सीट पर बिठाने परिवर्तन कराने, लेकिन जब श्रद्धा के साथ कोई कार्य किया जाए कि हाँ हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो चाहे वो गृहस्थ में कोई अपना व्यवसाय क्यों न हो, वो भी एक वैराग्य का प्रदर्शन है। परात्मनिष्ठा मात्र बेश धारण मुकुंद सेवाय होए संसार तारण। वैराग्य का अर्थ क्या है? निरंतर मन में केवल मुकुंद की सेवा पनपती रहे और कुछ नहीं। इसलिए यहां वर्णन करते हैं, गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छ्रयात्। तो देवकी के गर्भ से योग माया ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार उनको स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दिया। रामेति लोक रमणात्, लोगों को आनंद देने वाले वो राम नाम से प्रसिद्ध हुए। बलभद्रम बलोच्छ्रयात् और गर्भ संकर्षणात्, क्योंकि रोहिणी के गर्भ में उनको आकर्षित किया था इसलिए संकर्षण नाम हो गया। और बलभद्र अर्थात अभूतपूर्व शक्ति वाले वो हो गए। और इसीलिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान अब इस प्रकार सातवें गर्भ में देवकी के वहां से स्थानांतरित होने के पश्चात देवकी के गर्भ को अब तैयार कर दिए कृष्ण के प्राकट्य के लिए। तब कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण का जन्म होते ही अगले ही दिन नंदोत्सव मनाया गया। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जातालादो महामना आरुह्य विप्रान वेदज्ञान स्नात शुचि अलंकृत। तो तपस्या देवकी और वसुदेव ने की, लेकिन नंदोत्सव का सुख यशोदा और नंद महाराज को मिला और उस समय वहां पर गोकुल में बड़े आनंद और उल्लास के साथ नंदोत्सव मनाया जा रहा था। तो उस आनंद के परिवेश में रोहिणी जो अपने पति वसुदेव से दूर थी, उसके विरह में थी और विरह अग्नि में तड़प रही थी, लेकिन उसका वर्णन आ रहा है। रोहिणी च महाभागं नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत दिव्य वासस्रग कंठाभरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा, रोहिणी को महासौभाग्यशालिनी वर्णन किया जा रहा है। रोहिणी च महाभागा, अरे जो अपने पति से दूर है, जो अपने पति के विरह में है और अपने नन्हे से शिशु को अकेले ही पालन कर रही है, उसे महाभागा क्यों कहा गया है? नंद गोपाभिनंदिता, क्योंकि ब्रज का हर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आनंद में ही अपने आनंद को स्वीकार करते थे और अपने निजी सुख दुख की उपेक्षा करते थे। और तब कहते हैं कि व्यचरत दिव्य वासस्रक कंठाभरण भूषिता, और हर प्रकार के सुंदर आभूषणों से सुसज्जित। भले उस समय की सामाजिक प्रथा थी कि ऐसे अवस्था में उसे हर प्रकार के आभूषणों से अपने आप को अलंकृत नहीं करना था, लेकिन गोकुल में उत्सव की परिभाषा थी कि कृष्ण का आनंद, नंद के आनंद भयो, नंद का जो आनंद हो वही सभी का आनंद। और तब कृष्ण और बलराम वहां पर दोनों एकत्रित आकर कृष्ण को पांच प्रकार के रसों में सेवा करने लगे। शांत रस में संपूर्ण ब्रज के सौंदर्य को प्रकट किए। दास्य में कृष्ण के चरणों की वो सेवा करते थे। सख्य में कृष्ण के साथ हर प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान करते थे। वात्सल्य में कृष्ण को संरक्षण करते थे और माधुर्य में अनंग मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी के अनुजा के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार ए भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार बुझिते ओ आमा सबार नहीं अधिकार। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भक्त और भक्ति और भगवान के बीच के इन आदान प्रदान की वेगवती सरिताओं को मैं समझ नहीं सकता, आंतरिकरण नहीं सकता और व्यक्त भी नहीं कर सकता कि बुझते हो आमा सवार नहीं अधिकार, ये मेरा अधिकार से परे है। इसलिए एई बांके साक्षी मोरा आछे महाजन, जार बांक्य सत्य कोरी माने त्रिभुवन। तो साक्षी गोपाल के कथा में वर्णन आता है कि वो जो छोटा ब्राह्मण है वो कहता है कि चाहे आप लोग सभी मुझ पर विश्वास न करो, हाँ मेरे पास संपत्ति नहीं, धन नहीं, शिक्षा नहीं, किसी प्रकार की भौतिक योग्यता नहीं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है मेरे कृष्ण के शब्दों पर श्रद्धा। एई बांके साक्षी मोरा आछे महाजन। बड़े ब्राह्मण ने गोपाल के सामने साक्षी दिया है और इसलिए मुझे गोपाल के शब्दों पर श्रद्धा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं अमेरिका गया था तो मेरे पास धन नहीं था, सत्ता नहीं थी, राजनीति नहीं थी, कोई अन्य संपत्ति मेरे पास नहीं थी, केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों पर श्रद्धा थी। तो वैष्णव आज्ञा और उन शब्दों के ऊपर श्रद्धा मात्र ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और उस संपत्ति को लेकर जो भक्ति की यात्रा करता चला जाएगा उसके जीवन में सफलता अनिवार्य है और निश्चित है। कन्या पाप मोर मने इहा नहीं दुख, ब्राह्मणेर प्रतिज्ञा याय एई बड़ा दुख। तो कहते हैं मैं यहां पर इसलिए नहीं आया गोपाल कि मैं अपना विवाह करवा सकूं, ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा दी और अगर आपके सामने की हुई प्रतिज्ञा भंग होती है वो नरक में जाएगा, उसके लिए मैं प्रार्थना करने आया। कई लोग होते हैं जो बार बार बोलने पर भी कभी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि दूसरों के कहने पर सुधरने के योग्य नहीं रही। क्या उनके लिए कोई भविष्य है? हां है। अगर वैष्णव समुदाय उनके लिए प्रार्थना करे तो वो सामूहिक प्रार्थना की कृपा से, शक्ति से भगवान परमात्मा स्वरूप उनके हृदय में परिवर्तन लाएंगे। और इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तो कब तक कहां तक समझाए और क्या कुछ सुधारे, लेकिन हम सभी के लिए अंतिम आशा के किरण भगवान के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करनी है। और जब हम अपने लिए और दूसरे वैष्णवों के लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना की शक्ति से भगवान इतने प्रभावित होते हैं कि वृंदावन छोड़कर भारत के दूसरी ओर विद्यानगर चलते चले जाते हैं। केवल उस ब्राह्मण की प्रार्थना से उनका हृदय पिघल जाता है। तो इसलिए प्रार्थना की शक्ति कोई कम नहीं और इसीलिए विग्रहों की स्थापना की जाती है जिससे हम एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे को भगवान के निकट लेके चल सकें। जो हम एक दूसरे को साक्षात बोलकर नहीं कर सकते वो भगवान के समक्ष अपनी अर्जी प्रस्तुत करके, अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करके उनके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए यहां पर बलराम जी भगवान श्री कृष्ण की विविध प्रकार से सेवा करते हैं और प्रभुपाद लिखते हैं वन कैनॉट अटेन द सुप्रीम प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट बीइंग सफिशिएंटली फेवर्ड बाय बलराम। बलराम डज नॉट मीन फिजिकल स्ट्रेंथ। नो वन कैन अटेन स्पिरिचुअल परफेक्शन बाय फिजिकल स्ट्रेंथ, वन मस्ट हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ विच इज इन्फ्यूज्ड बाय बलराम जी। तो वृंदावन में आपने विग्रह देखे होंगे कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम क्यों? कृष्ण गिव्स द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान की तलवार कृष्ण प्रदान करते हैं, लेकिन तलवार इतनी भारी है अगर उठती नहीं तो क्या करें। तो इसलिए बलराम की कृपा चाहिए, उनकी कृपा से हम इस ज्ञान रूपी तलवार को उठाने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में प्रकट होते हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम इसे उठा सकें। एक कोई विजिटर प्रभुपाद जी के पास आया और बोले, मेरे गुरु बड़े शक्तिशाली हैं। प्रभुपाद ने कहा, क्या है उनकी शक्ति? वो बोले, वो मुझे स्पर्श करते हैं तो मुझे बिजली का झटका लगता है। प्रभुपाद ने कहा, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालो, उससे बड़ा झटका लगेगा। लेकिन ये कोई गुरु के लक्षण कहीं कोई शास्त्र में दिए हैं क्या? गुरु वो जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करे। तो इसलिए अब बलराम जी प्रकट होते हैं और बलराम जी के प्रकट होने के पश्चात उनका नामकरण करने गर्गाचार्य आते हैं और गर्गाचार्य आकर कहते हैं, यदु नाम महामाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतश्च तम मन्ये देवकी सुतम। नंद महाराज सावधान, आप मेरा स्वागत करके मुझसे निवेदन कर रहे हो कि इन शिशुओं का नामकरण करो, लेकिन मैं विश्व प्रसिद्ध हूं कि इसलिए यदुनाम हम आचार्य, यादवों के आचार्य के रूप में लोग मुझे जानते हैं। अगर कंस को पता पड़ेगा कि एक छोटे से गांव के अंदर कुछ दो शिशुओं का नामकरण करने राजसी पुरोहित गए थे, यादवों के पुरोहित गए थे, तो कंस के मन में संशय उत्पन्न होगा और इनको खतरा होगा। लेकिन नंद महाराज कहते हैं, नहीं, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारान् स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। सत्संग का अर्थ शब्द ध्वनि का आदान प्रदान। अगर साधु संत आए हों और जब तक वो अपने आशीर्वचनों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित न करे, तब तक आशीर्वाद पूर्ण नहीं होता। इसलिए इन दो बच्चों के साथ हम लोग जाएंगे गौशाला। जब सारी गायें बाहर गोचारण के लिए गई हैं, कोई नहीं होगा, वहां पर हम लोग करेंगे। तब बाध्य करके वो चल के लेके चलते हैं और फिर वहां पर गर्गाचार्य नाम देते हैं, अहम ही अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विधु। इसका पहला नाम होगा राम, क्योंकि वो अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों और ब्रजवासियों को आनंद देंगे, बहुत अद्वितीय बल का प्रदर्शन करेंगे, इसलिए बल नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यदो नाम पृथक भावात् संकर्षणम् उषन्त्यपि। वसुदेव और नंद महाराज दोनों के परिवारों को एकत्रित लाने के लिए वो यहाँ पर संकर्षण के नाम से भी जाने जाएंगे। इसलिए ये अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध होंगे, तो इसलिए बलराम जी का नाम इस प्रकार दे दिया गया। तत्पश्चात वर्णन आता है कि कैसे कृष्ण और बलराम विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं आरंभ करते हैं। श्री गंगिदम श्रियसि जला द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुतौ निषेधुम से गृहियाणि कर्तुमपि यत्र न तत् जनन्या शेकात आपतुत अलम मनसोभिविज्ञान। तो कहते हैं कि कृष्ण और बलराम नन्हे से शिशु के रूप में ही ब्रज के कीचड़ में लोटने लगते और उसमें रेंगने लगते अपने घुटनों पर, तो उसको यहां वर्णन किया गया है। तौ अंग्र युग्मम अनुकृष्य सरी श्रीपंतौ, दोनों चलने लगते किस पर? घुटनों पर, ब्रज के कीचड़ में। कर्दमेशु, ब्रज का कर्दम अर्थात कीचड़। इसलिए राम का, बलराम जी का दूसरा नाम भी क्या है? घसीटा राम। घसीटा राम भारत में बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि बलराम और कृष्ण दोनों इस तरह चलते थे। फिर गोपियों के चरणों के नूपुर की ध्वनि को सुनकर उनको लगता था, बलराम जी को लगता था, ये रोहिणी है, और कृष्ण को लगता था यशोदा है और पीछे पीछे भागते थे, और फिर जब जाकर उनको पकड़ते थे फिर देखते थे कोई और गोपी होती तो फिर उसको छोड़ के फिर भागते। तो इसलिए यहां वर्णन किया गया है कि तन्नाद हृष्ट मनसो अनुसृत्य लोकम, वो गोपियों के चरणों के नूपुर की ध्वनि उनको आकर्षित करती थी। उसी प्रकार जो हरि कथा और कीर्तन करेगा वो कृष्ण और बलराम को आकर्षित कर अपनी ओर खींच पाएगा। और क्रीड़ा परो अति चलो, गोपियां अपने घर का कार्य पूरा नहीं कर पाती थी, श्रृंगी अर्थात सींग वाले पशु, सींग वाले पशुओं को देखकर कृष्ण और बलराम बड़ा आकर्षित होकर उस सींग को पकड़ने जाते, और यशोदा और रोहिणी तुरंत उनको उठाते कि भैया मरना है क्या तुमको, लेकिन जहां उनको सींग दिखता उनको लगता पकड़ो। अग्नि अब उनके जो अंगीठी के अंदर जो अग्नि दिखता, तो उस गोबर के कंडों में पक रहे जो भी भोजन था वो अग्नि को देखकर उनको लगता कोई आकर्षक वस्तु है, दोनों भक्ते अंदर हाथ डालने, तो फिर उनको पकड़ना पड़ता था। दमष्ट्री अर्थात बंदरों के दांत, कृष्ण और बलराम बंदरों को पकड़ते थे, उनका दांत खोलकर उनका दांत गिनने लगते थे, और यशोदा बोलती थी अरे गणित सीखने का दूसरा तरीका नहीं है क्या। दमष्ट्री, और फिर असी लटके हुए तलवार, उस पर जब प्रकाश पड़ता था सूर्य का प्रतिबिंब आता था तो चमकता था, उसको देखकर आकर्षित होते उसको पकड़ने जाते, तो इनको पकड़ना पड़ता। फिर कोई मटके के अंदर जल भर के रखा होता तो उनको उत्सुकता होती देखने के कितना लेवल है पानी का, असी जला, और फिर सीधा उल्टा अंदर देखने लगते, पैर ऊपर सर नीचे, और यशोदा मैया का हृदय गले में, कह रहे क्या हो रहा है ये। द्विज और बड़े बड़े खतरनाक पक्षी जब आते तो उनको भी वो पकड़ने जाते, कंट के भी, फिर उनको लगता कि यशोदा और रोहिणी दोनों बार बार अड़चन कर रही हैं, चलो बाहर भाग चले, और फिर जब वन में भागने जाते तो कंटक लगते उनके चरणों को और लहूलुहान हो जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम कैसे थे, क्रीड़ा परौ अति चलौ स्वसुसौ निषेधुम, क्रीड़ा परौ क्रीड़ा परायण भगवान थे, डेडिकेटेड टू प्लेइंग, क्रीड़ा परौ अति चलौ बड़े ही चंचल, स्वसुतौ निषेधुम अपने दोनों बच्चों को रोकने का प्रयत्न करती यशोदा और रोहिणी। गृहयाणि कर्तुमपि यत्र न तत् जनन्यौ, कृष्ण और बलराम अपनी माताओं को और अन्य गोपियों को अपने घरेलू कार्य करने नहीं देते थे, कुछ न कुछ अड़चन और बाधा करते रहते थे। शेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम, तो इसलिए इसमें बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है, दे वेर यशोदा एंड रोहिणी एंड द गोपीज वेर फुल्ली इक्विपॉइज्ड इन द ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ मटीरियल अफेक्शन। तो ये बड़ा क्लासिक स्टेटमेंट है प्रभुपाद का, फुल्ली इक्विपॉइज्ड इन ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी इन द डिस्ट्रेस ऑफ मटीरियल अफेक्शन, अर्थात ब्रज में निरंतर यशोदा और रोहिणी कृष्ण और बलराम के संरक्षण की चिंता में विचलित रहते थे, और कृष्ण के संरक्षण सुरक्षा और आनंद की चिंता में उनका निरंतर विचलन ही उनकी शांति का अनुभव था। तो ये ब्रज की शांति की अभूतपूर्व परिभाषा है जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हम नहीं अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैर् ब्रजबालकैः सह रामो ब्रजस्त्रीणां चिक्रीडे जनयन् मुदाम्। सह रामो राम के साथ, बलराम के साथ कृष्ण ब्रजस्त्रीणां ब्रजस्त्रियों को चिक्रीड़े जनयम मुदाम, क्रीड़ा करते हुए बड़ा आनंद दे रहे थे। तो इसलिए जब दामोदर लीला हो रही थी तो यशोदा माई ने कृष्ण को बांध दिया। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधने, अपने बंधन में बांध दिया। कृष्ण बंध गए और वो भी बिल्कुल पब्लिक में बंधे, क्योंकि कृष्ण जान दिखाना चाह रहे थे सबको कि भाई देखो बांधना हो मुझे तो चांस है। यशोदा मैया ने जैसे बांधा आप लोग भी बांध सकते हो। तब बलराम जी वहां आकर कृष्ण को देख कर कहते, ये क्या, किसने बांध दिया तुमको? उसने कहा यशोदा माई ने बांध दिया। बलराम जी ने कहा उनकी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ? तो कृष्ण ने कहा आप ही जाके देखो, बड़े भाई तो आप हो, आप जैसे बड़े भाई होते हुए आपके अनुज के साथ कोई इस प्रकार अत्याचार करे शोभा देता है क्या? बलराम जी हाँ बिल्कुल ठीक का, मैं जाता हूं। अंदर गए, बोले किसने बांधा कृष्ण को, किसने बांधा? यशोदा माई बाहर आई छड़ी लेके, मैंने बांधा, बोल क्या करेगा? बलराम जी ने कहा आप जानते नहीं कृष्ण कौन है? यशोदा माई ने कहा कौन है? बलराम जी ने कहा अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब उनसे प्रकट हुए हैं। तो बोले अच्छा और क्या? तो बलराम जी बोले और ऊपर से जितने अवतार इस जगत में प्रकट हुए, राम नरसिंह वामन इत्यादि, वो सारे अवतार भी उनसे ही प्रकट हुए, आप समझते नहीं हो क्या? तो बलराम जी को देखकर बोले यशोदा माई तो तू कौन है बता? तो बलराम जी बोले मैं कृष्ण से प्रकाशित पहला विस्तारित अंश हूं, उनका भी अवतार हूं। यशोदा माई छड़ी उठाई, बलराम जी को देखकर बोलती है सारे अवतारों को मेरे घर में जन्म लेना था क्या? ज्यादा आवाज उठाएगा तुमको भी बांध दूंगी, भाग जा यहां से। तो बलराम जी बेचारे भागे भागे गए कृष्ण को जाकर कहते हैं मैंने प्रयत्न तो बहुत किया लेकिन विफल हो गया, क्योंकि जो वात्सल्य रस से बांधा हुआ जो रस्सी था वो साख्य से नहीं खुल सकता था। तो फिर बलराम जी ने कृष्ण को कहा लेकिन तुमने भी कोई कम गलत करतूत थोड़ी किए हैं, कि तुमने भी कर्म के सिद्धांत के ऊपर भविष्य में बहुत लेक्चर देना है, थोड़ा कुछ सहन कर लो अच्छा ही होगा। तो इसलिए कृष्ण और बलराम लीला इसलिए कर रहे थे जिससे सभी उन लीलाओं के प्रति आकर्षित हो सके। तो अब प्रसंग आता है कि बलराम जी के विषय में, कि जब कृष्ण और बलराम दोनों गोचारण करते हुए वन के भीतर गए तो एक दिन की बात है कि सभी ग्वाल बाल कृष्ण और बलराम को बोलने लगे राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमहत वनम तालाले संकुलम। कहते हैं कि हे कृष्ण हे राम हम लोग यहाँ ताल वन के वहां आ गए। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, दुष्टों को समाप्त करने वाले हे कृष्ण, वनम तालाले संकुलम, यहाँ तालवन में आ गए। लेकिन तालवन की विशेषता क्या है? बड़े ही स्वादिष्ट फल इस तालवन के वृक्षों में लदे रहते हैं, लेकिन इस तालवन को एक बड़ा ही खौफनाक खतरनाक असुर जिसका नाम है धेनुका, वो उसको सुरक्षित रखता है और किसी को अंदर घुसने नहीं देता। और ये धेनुका अकेला नहीं है, उसका रूप गधे के जैसा है और उसके दूसरे कई वैसे ही गधे मित्र भी हैं, लेकिन सभी गधे नहीं हैं, असुर हैं। और कई मनुष्यों को उन्होंने जीवित पहले खा लिया और बड़े बड़े खूंखार पशु भी इस वन में प्रवेश करने के लिए घबराते हैं। लेकिन हमारे मन में बड़ा कौतूहल है कि ये ताल फल कैसा होगा, हमारी बड़ी इच्छा है इसको चखने की, और हमारी आप दोनों के ऊपर पूरी श्रद्धा है क्योंकि हमारे आंखों के सामने आपने इतने लोगों का हाल बेहाल किया है कि ये गधा क्या है। तो थोड़ा कृष्ण और बलराम को चढ़ाया और उनके लिए क्या था, उनके लिए कुछ था ही नहीं। जब पूरे ब्रह्मांड को संचालन करने वाले कृष्ण और बलराम सामने हो, एक गधा क्या कर सकता है। तो इसलिए तस्मात् कृतार्थात भी तैनृभिर अमित्रहन न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगैर विवर्जितम्। तो इसलिए कहते हैं यहां पर उनके भय से पक्षी भी तालवन के ऊपर से नहीं उड़ते, इतना खतरनाक है वो धेनु का। तो इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इन लोगों ने जब प्रस्ताव रखा तो ग्वाल बाल मित्रों को कृष्ण और बलराम पर बड़ी श्रद्धा थी कि वह अवश्य इस गधे को समाप्त करेंगे। और फिर वो अंत में देखते हैं कि कृष्ण कोई प्रतिकार या प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तो पहले कृष्ण से उनकी अपेक्षा थी, कृष्ण कुछ कह नहीं रहे, उदासीन बैठे हैं। और जब कृष्ण जब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे तो वो लोग क्रोधित हो गए, फिर बलराम को देखकर बोलने लगे, प्रयच्छत तानिनः कृष्ण गंधलोभित चेतसाम। कहने लगे कृष्ण को कि ये ताल फल का गंध हमें आकर्षित कर रहा है, वांछास्ति, हमारे मन में बड़ी इच्छा है उसको स्वीकार करने की, आस्वादन करने की। और कृष्ण वहां देख रहे हैं और सारे ग्वाल बाल मित्र बोले, अरे कृष्ण तुमको हम बोल रहे हैं, सुन रहे हो क्या? और कृष्ण और थोड़ा उस तरफ निकल गए। तो बेचारे ग्वाल बाल मित्र परेशान होकर बोले, यार इनके ऊपर कोई होप नहीं लग रहा, बलराम जी के ऊपर ट्राई मारते हैं। फिर कहते हैं, महती राम, अरे महान राम, गम्यताम, क्या आप हमारी इच्छा पूरी करोगे क्या? फिर बलराम जी भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते रहे, बलराम जी कृष्ण की ओर देखते रहे कि कृष्ण क्यों चले जा रहे हैं। तो बलराम जी भी कुछ तुरंत आंसर नहीं दिए। और जब व्यक्ति आतुर रहता है तुरंत सोल्यूशन के लिए, और जिसके पास वो प्रस्ताव लेके जा रहा है कोई प्रतिक्रिया न दे और केवल आंख ही ताकता रहे, तो उसका भी क्रोध बढ़ जाता है। तो सारे ग्वाल बाल मित्र बोले, यदि रोचते, अगर आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं तो जाओ भाड़ में। ऐसा जब बोला तब बलराम जी को झटका लगा, हट कौन है भाई, क्या करना है? तो बोले, ये देख रहे हैं क्या, ये तोड़ना है। तो बलराम, तोड़ेंगे? बोले, लेकिन गधा बैठा है अंदर। तो बोले, गधे को उड़ाएंगे हम। तो इसलिए वो अंदर बलराम जी पहले जाते हैं, और जब इस तरह वो दोनों कहते हैं, बलराम जी अंदर चलने लगते हैं, फिर कृष्ण साथ में चलते हैं। एवं सुहृत वचः श्रुत्वा सुहृत प्रिय चिकीर्षया। तो अपने मित्रों को इस प्रकार उलाहना करते हुए सुनकर, सुहृत वचः श्रुत्वा, उनके मित्रों के इस वाणी को सुनकर सुहृत प्रिय चिकीर्षया, उनको संतुष्ट करने के लिए सबसे पहले कृष्ण क्या किए, प्रहस्य जगमतोर गोपैर। कृष्ण सबसे पहले मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? अरे ये लोग गधे को इतना भाव दे रहे हैं, कैसे गधा इतना खतरनाक हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। प्रहस्य जगमतुर गोपैर मृतौ तालवनम प्रभो। तब फिर वो तालवन के अंदर कृष्ण को लेकर चले, और तब बलराम जी गए। और कृष्ण ने पहले ही निश्चय कर लिया था कि क्योंकि अब धेनुकासुर जो था अपने पूर्व जन्म में बलि महाराज का वंशज था, और भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज को प्रॉमिस दिया था कि मैं कभी आपके किसी वंश के लोगों को मारूंगा नहीं, इसलिए कृष्ण ने सोचा ये धेनुकासुर को मारना मेरे लिए उचित नहीं, और इतने समय से काफी असुरों को मारकर मेरा स्कोर काफी बढ़ चुका है, अभी बलराम जी को खाता खोलना चाहिए, इसलिए बलराम जी को आगे कर दिया। तो बलराम जी गए और ताल के विशाल वृक्ष को हिलाने लगे, ताल के बड़े बड़े फल नीचे गिरे, और जैसे ही ताल के फल नीचे गिरे धम धम करके आवाज आया। उस ध्वनि को सुनकर विशालकाय धेनुका रेंगता हुआ भागा आया, और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ जब आया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका शरीर आसमान को स्पर्शीभूत कर रहा हो, और उसके रेंगने की ध्वनि से तीनों लोक कंपित हो रहे थे और धरती हिल रही थी। वो कोई सामान्य गधा नहीं था, वो असुर था जो गधे के रूप में था। तो फिर जब वो आकर सीधा बलराम जी के ऊपर आक्रमण किया, बलराम जी के ऊपर आकर इतने जोर से आक्रमण किया, लेकिन बलराम जी को मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो किसी ने आके उनको सहलाया हो। बलराम जी ने उनकी उपेक्षा कर दी, फिर वो धेनु का पीछे गया, फिर थोड़े समय के बाद चारों तरफ घूमने लगा। तो इसलिए यहां पर वर्णन आता है कि धेनु का उस समय पीछे हटने के बाद, पहली बार मारा फिर देखा कि कुछ हुआ नहीं, तब निहत्य उरसी का शब्दम मुंचन पर्यसरत खलह। पर्यसरत बलराम जी का परिक्रमा मारने लगा, चारों तरफ घूमने लगा बलराम जी बीच में। बलराम जी देख रहे हैं कर क्या रहा है गधा। और पर्यसरत, अब पर्यसरत का अर्थ है परिक्रमा। अगर आपको लगेगा अरे परिक्रमा मतलब भक्त हो गया क्या, लेकिन आगे शब्द का प्रयोग किया गया खल, खल है ये। वो परिक्रमा क्यों मार रहा था? क्योंकि भक्ति में कोई भी कार्य करना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आपका उद्देश्य क्या है। तो केवल परिक्रमा करना पर्याप्त नहीं, उस परिक्रमा के पीछे उद्देश्य क्या है, अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम है क्या। तो बलराम जी की सेवा के लिए वो परिक्रमा नहीं मार रहे थे, वो देख रहे थे कि कौन सा वीक स्पॉट है बलराम जी के अंदर जिसपे मैं आक्रमण कर सकूं। बलराम जी को मारने के दृष्टिकोण से पर्यसरत, इसलिए खल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए कुछ समय देखने के पश्चात वह फिर उच्च स्वर में चीखता हुआ अपने पिछले दो पगों को बलराम जी के छाती पर मारने का जब प्रयत्न किए, तब बलराम जी ने उनके पैरों को यूं पकड़ा और पकड़कर अपने सर के ऊपर यूं घुमाया, और यहां शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है ब्राह्मण ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। अर्थात जब उठाकर उन्होंने उनको घुमाया तो उस घुमाते हुए परिस्थिति में उसके भ्रम में प्राण त्याग दिए। तो ये बाय द वर्लिंग घुमाते हुए उनके एक्शन से त्यक्त जीवितम धेनु का अपना शरीर त्याग दिया। और तुरंत अगले ही श्लोक में कहते हैं नैत चित्रम भगवती ही अनंते जगदीश्वरे ओत प्रोतमिदम यस्मिन स्तंतुषु अंग यथा प्रदम। कि अरे नैतम एक गधे को मारा, ये वास्तव में बलराम जी के लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अनंते जगदीश्वर जगत को चला रहे हैं, जगत की सृष्टि जिन्होंने की है, उन्होंने गधे को मारकर उसके मृत शरीर को केवल सबसे ऊंचे ताल वृक्ष के ऊपर पटक दिया और उस मृत शव के भार से वो विशालकाय ताल वृक्ष नीचे गिरा, अपने बगल वाले दूसरे वृक्ष को गिराया, उसने तीसरे वृक्ष को गिराया। तो बलराम जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, और शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया इसलिए वो गधा केवल पेड़ तक ही गया। अगर बलराम जी शक्ति का प्रदर्शन करते वो गधा ब्रह्मलोक तक पहुंच जाता, क्योंकि बलराम जी के भुजाओं में इतनी शक्ति है, क्योंकि यूं फेंके जो इसरो के साइंटिस्ट इतने साल प्रयत्न कर जो सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, बलराम जी जो है बेचारे सीधा हाथ से उठा के फेंक के सीधा कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं बलराम जी ने उस लीला के मर्यादा को रखने के लिए, है ना, लीला के मर्यादा को रखने के लिए अपनी शक्ति के प्रदर्शन को सीमित कर दिया, अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखाई, यूं ही फेंक दिया। नहीं तो फिर वो लीला में अचानक वो धेनुका का शव गायब हो जाता तो फिर इतना मजा नहीं आता। और हो सकता है दूसरे गधों को लगता है शायद अभी भी जिंदा है, कहीं तो घूम रहा होगा, अमर रहे बोलते रहेंगे। इसलिए बलराम जी को जरूरी था कि उस शव को कायम रखना, दूसरे गधों को दिखाना कि तेरा गधा यहीं पर मरा हुआ है। इसलिए बलराम जी ने अपने शक्ति के प्रदर्शन में ब्रेक लगा दिया, है कि नहीं? और इसलिए यूं जाके ऊपर केवल उस वृक्ष के ऊपर उसको टंगा दिया, नहीं तो वास्तव में फेंकते तो पता नहीं अभी तक सैटेलाइट के रूप में घूमता रहता हो, कोई भरोसा नहीं था। इसलिए अब वर्णन आया है धेनुका किसका प्रतीक है। तो धेनुका ठाकुर भक्ति विनोद के अनुसार धेनुका स्थूल बुद्धि स्यात् गर्भधस्ताल रोधक अष्टमे लक्षते दोष संप्रदाय सतान महान क्रॉस मेटीरियलिस्टिक इंटेलिजेंस ऑफ आई मी एंड माइन, मैं और मेरा। तो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस अर्थात भौतिक बुद्धि, इससे क्या होता है दूसरा परिणाम, मैं और मेरा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। तीसरा, इसके कारण क्या होता है, वी इन्वेंट सोशल डिस्टिंक्शन, सामाजिक रूप पर हम भेदभाव करने लगते हैं। चौथा, उस भेदभाव का हम प्रचार करने लगते हैं कि हमारा गुट आपके गुट से श्रेष्ठ है, हम ये हैं, हम वो हैं, आप ये हो। और पांचवा, कई बार लोगों को लगता है कि ये जो सिद्धांत हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं और इसको बदला नहीं जा सकता, और इसके परिणाम स्वरूप लोग इस ज्ञान के भाव को नहीं समझ सकते और उसके औपचारिकताओं में घूमते चले जाते हैं। सो देयरफॉर सच पीपल बिकम भारवाही, दे कैरी द बर्डन ऑफ नॉलेज नॉट नोइंग द एसेंस ऑफ नॉलेज, लाइक डोंकी, गधा, दे कैरी दैट बर्डन। अर्थात इन सभी सामाजिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए बहुत सारा ज्ञान उठाकर चलते हैं बिना तत्व को समझे। इसलिए ये भौतिक बुद्धि, जिसके कारण धेनुका न स्वयं ताल फलों का आस्वादन करने के लिए तैयार था, न दूसरों को वो आस्वादन करने देता था। अर्थात हम कहेंगे कि जैसे प्रभुपाद जब प्रचार करने का प्रयास किए, ये वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बड़ा सुंदर लिखते हैं, सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे भोजेंद्र के अग्निशिखे वृद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। तो प्रभुपाद बहुत प्रीचिंग करने का ट्राई कर रहे थे भारत में, सब लोग बोल रहे थे अरे हम तो पहले धार्मिक हैं, हमको इसकी क्या आवश्यकता है, हम तो सब जानते ही हैं। तो ये बात ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस, भौतिक बुद्धि, जिसके कारण हमें लगे कि हम तो सब जानते ही हैं, हम इसकी क्या आवश्यकता है, हम बराबर बात को समझते हैं, और फिर दूसरों को भी समझने न दे, जैसे धेनुका, है कि नहीं? तो हम भारतीय हैं या हम फलाना फलाना जाति के हैं, प्रांत के हैं, इसके हैं, हम वेस्ट के हैं, हम यूरोप के हैं, हम यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, इन सब धारणाओं को लेकर ग्रॉस मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस एंड ट्राइंग टू अप्लाई दैट टू स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। तो प्रभुपाद इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड यूरोपियन वैष्णव, अमेरिकन वैष्णव, अफ्रीकन वैष्णव, इंडियन वैष्णव, ऐसा नहीं। वसुदेव कुटुंबकम, हम लोग सभी जीव हैं, और कृत्रिम रूप से इस प्रकार भेदभाव करना ये धेनुका की प्रवृत्ति है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर इस बात को ध्यान में रखें कि हर परिस्थिति में हमें भक्ति के इस कार्य में लगे रहना है और दूसरों को भी इस भक्ति के कार्य में लगने का अवसर देना है। तो बलराम जी के इस कथा को हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे कल प्रातःकालीन 7:45 बजे सत्र में, और कल सुबह की कथा में हम प्रलंबासुर वध के विषय में चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण और बलराम जी किस तरह कृष्ण बलराम जी की सेवा करते हैं थोड़ा बहुत वो चर्चा करेंगे, और फिर प्रलंबासुर वध की चर्चा करेंगे, और फिर कल संध्याकालीन सत्र में 7 बजे हम लोग फिर कृष्ण बलराम जी के द्वारका की कुछ लीलाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जय बलराम जी की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी।
हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। तो हम सब लोग श्रीमान गौरव को धन्यवाद देंगे।